ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुसिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة مريم کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے. حضرت مریم علیہ السلام شادی شدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ایک آزمائش کی. حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھیں لیکن آزمائش ان کی بھی ہوئی اور جو جتنا بڑا ہوگا اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوگی. کماری عورت جب ماں بنتی ہے تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا، یہ آزمائش کا موقع ہوتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ جب قوموں کا زوال آتا ہے، اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں، تو پھر بن میرے شادی کے بچہ ہونا اٹس اوکے، چائلڈ آؤٹ آف ویڈ لاک. میرا خیال ہے کہ آج کی نسلوں کو یہ اتنا عجیب نہیں لگتا ہوگا، بلکہ لیکن پہلے دور میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. اور اللہ کرے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز عجیب لگتی ہے تو یہ لگتی ہی رہے، کیونکہ جتنی تیزی سے مختلف چیزوں کو ہم اپناتے جا رہے ہیں تو وہاں دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں آ رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پریگننٹ کرتے ہیں. اور اب ایک عورت کی آزمائش ہے، اور وہ کیا ہے کہ مریم علیہ السلام بچے کی ولادت کے لیے دور چلی جاتی ہیں کسی جگہ پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، چند آیات پیچھے پڑھ دیتی ہوں. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا. یہ آیت نمبر 16 ہے میں سورت مریم کی، اگر آپ کے فون میں ہے قرآن پاک تو آپ کھول سکتے ہیں. کیا کہا کہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کتاب میں. کیا ہوا تھا، اِذِن تَبَزَّتْ مِنْ اَهْلِهَا، جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے. مکانن شرقیہ، مشرقی جانب ایک جگہ پہ. میرے حال بہت سارے لفظ آپ کو اردو سے ملتے ہوئے لگ رہے ہوں گے نا، مکان، شرقیہ، اہل، من، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. یعنی مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی طرف ایک جگہ میں چلی گئی. بیت اللحم تھی یہ جگہ، جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ان سے ایک حجاب لے لیا، پردے میں آ گئی، یعنی الگ اکیلے میں ہو گئی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر وہ ان کے پاس ایک بشر کی شکل میں آ گیا، یعنی فرشتہ انسانی روپ میں آیا، کیونکہ اگر وہ فرشتے کے روپ میں آتا تو کسی انسان کے لیے اس کا دیکھنا ممکن نہیں رہ سکتا. خیر، فرشتہ اب مریم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مرد ہے یا کون ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہنے لگی میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، یعنی مجھے کچھ نہ کہنا. ایک با عصمت، با حیا اور موڈیسٹ بچی تنہائی میں کسی مرد کو دیکھ کر یہی کہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک عورت اور مرد تنہا نہ ہو، چاہے کوئی یہ کہے کہ میں اس کو قرآن پڑھانے جا رہا ہوں، پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوں گے تو ثالث اخوم الشیطان، تیسرا ان میں شیطان ہوگا. تو شیطان جب آتا ہے تو وہ کوئی اچھے کاموں کی بات تو نہیں کہتا، اور جس کو بڑا مان ہے اپنے اوپر وہ اس کے اثرات پڑھنا چاہے تو بعد میں آئے، میں آپ کو کچھ لنکس دوں گی، آپ خود پڑھ لیجئے کہ کیسے پھر یہ سفر شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نہ دنیا کی عزت رہتی ہے نہ دین کی. تو بہرحال یہ ڈر گئی کہ میرے پاس سے چلے جاؤ. قال انما انا رسول ربی کا، کہنے لگا وہ فرشتہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں. رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے اور رسول بشر بھی ہوتا ہے. تو مراد ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوں، کیوں آئے ہوں؟ لیہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ تجھے میں ایک پاکیزہ بیٹا دوں. قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی میرا بیٹا ہوگا کیسے؟ لم ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اسباب پہ یقین رکھتی تھی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا یا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اسباب کی روشنی میں ہوتا ہے. تو کہنے لگی کہ بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. کنایا ہے صحبت کا، تعلق کا، کہ میرے کسی مرد کے ساتھ کوئی سیکشول ریلیشنز نہیں ہے، تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم اکو بغیشن، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. करप्ट औरत नहीं हो, गंदी लड़की नहीं हो कि जिसके बच्चे के होने के चांसेस हो। काला कजाली की काला रब्बू की हुआ अलैया हय्युन, फरिश्ता बोला इसी तरह होगा, कह दिया तेरे रब ने कि ये मेरे ऊपर आसान है, यानी ये मरियम तेरे मेरे लिए ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे रब ने कह दिया कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। और अगर आप इस बात पे गौर करें, जो शादीशुदा कपल है, आप देखिए कि शौहर बीवी से भी जो बच्चा वजूद में आता है क्या अकलमंद ही है। हम इस पे तो हैरान होते हैं कि मरियम को बिन शौहर के बच्चा कैसे मिल गया। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि शौहर वालियों को बच्चे कैसे मिलते हैं, अगर हम अपनी आंखों से दिन रात ये चीजें देख और सुन ना रहे होते, कभी ना मानते। मैं तो ना मानती, इतनी इम्पॉसिबल चीजों को अल्लाह पॉसिबल करता है। तो जिसके लिए ये आसान है उसके लिए वो भी आसान है, कोई बात ही नहीं है, कर क्यों रहे ऐसा। अब सवाल पैदा होता है कि आपने मुझे इस आजमाइश में क्यों डाल दिया। वली नजल हुआ आयत लिन्नास, हम उसको लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। किसको? ईसा को। किस बात की निशानी? कि अल्लाह ताला हर चीज पे खातिर है। वह रहमतम मिन्ना, और ये हमारी तरफ से रहमत है, यानी हजरत मरियम को तसल्ली दी जा रही है कि आप पे कोई अजाब नहीं है, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है, ये एक उसकी रहमत है कि वो आपके साथ ये मामला करता है। वकान अमरन मकदिया, और उसने ये काम डिसाइड कर लिया, यानी आपके मेरे करने या कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ने इस काम को करना था, अल्लाह ताला ने इस काम को लिख लिया है कि ये काम होगा और इस काम के होने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। खैर, फजाहल महाद इला जिस नखलती, औरत प्रेग्नेंट हो गई, अब आ गया उसको दर्दे जह। देखिए कुरान में डिलीवरी पेन्स का नाम तक लिखा हुआ है, और एक औरत की इस कुर्बानियों को अल्लाह ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि उसका तस्करा महाज है, जैसे हैज होता है ना, पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं, उसी से महाज का लफ्ज आता है। और वो क्या होगा कि जिसमें एक औरत बच्चे को जनती है, उस दर्द की बात है, यानी जब बीवी मरियम को पेन शुरू हुए तो खजूर के एक दरख्त की तरफ आ गई। कालत या लैतनी मितु क़ब्ला हाज़ा, कहने लगी काश इससे पहले मैं मरी जाती। भला ये क्यों कहा? मेरा ख्याल है हर औरत ही उस वक्त ये कहती है, सच है कि नहीं? किसी का बच्चा हुआ, आज ये हमारी एक साथी है तो उनके पोता हुआ, तो वो कह रही है कि इतनी मुश्किल से हुआ कि वो जो जिसका बच्चा हुआ है वो कहता है इतना मुश्किल है बच्चा, तो फिर एक ही काफी है। यानी उसको अपनी बीवी पे रहम आ रहा है कि तुमने इतनी मुश्किल सही है मेरे लिए, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। तो यही हुआ, ये एक तो एक आम औरत को जो तकलीफ होती है वो तो होती है, लेकिन उसके बाद बच्चे को देख के खुश, कहने लगी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने कहा अब क्यों रो रही है? कहती खुश होगी, बच्चे को देख के खुश होगी, पहले बहुत रो रही थी। तो बच्चे को देखना, फिर अप्रिसिएशन का इजहार। आपको पता है कि औरत के पांव जमीन पे लग जाते हैं बच्चे से। हमारे बड़े कहते थे कि बच्चे औरत की फोर्स होते हैं, औरत के कदम ससुराल में जम जाते हैं, फिर वो सासें ज्यादा रोक नहीं डालती कि हमारे पोतों नवास पोतियों की माँ भी है ना, यानी औरत स्ट्रांग हो जाती है, ये एहसास वो दर्द बुला देता है। लेकिन बीबी मरियम को सोचिए, अपने ऊपर लेकर सोचे जरा, आज किसी शादीशुदा लड़की के घर बच्चा होता है, कहीं दादी जा रही है, कहीं नानी जा रही है, कहीं टोकरी बन रही है, कहीं क्या क्या पंजीरी बनती है, और कितने लाड देखे जाते हैं। बीबी मरियम के पास तो कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह का फरिश्ता। ये आजमाइशें होती हैं, याद रखिए, जिनसे अल्लाह ने बड़े काम लेने होते हैं ना, अल्लाह उनको तनहा कर देता है, वक्त और मुआशरे से वो अलग हो जाते हैं। कहने लगी या लैतनी मितु क़ब्ला हाज़ा, एक तो दर्द थी, दूसरी रुसवाई का डर था कि अब इस बच्चे को लेके जाऊंगी तो होगा क्या। वकुन तो नस्यम मनसिया, काश मैं भूली बिसरी हो जाऊं, यानी लोगों को मेरा नाम भी ना याद रहे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे कल्चर में कहते हैं ना कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, यानी मैं किसी को शक्ल ना दिखाऊं। खैर, फनादा हमें तहतिहा, फिर पुकारा उसको उसके नीचे से, यानी पाओं की तरफ से एक आवाज आई, अल्लाह तहसनी, गम ना करो, कद जाला रब्बू की तहत की सरिया, तेरे रब ने तेरे पाओं की तरफ से एक चश्मा जारी कर दिया। आपको पता है कैसे वक्त में पानी की जरूरत होती है, हाइजीनिकली सफाई के लिए और भी चीजों की जरूरत होती है, तो वहां पानी नहीं था, अल्लाह ने वहां पानी को जारी कर दिया। एक पानी का चश्मा जारी हुआ था इस्माइल की एड़ियों से, जब बीबी हाजरा ने कुर्बानी दी, यहाँ हजरत ईसा और उनकी माँ की कुर्बानी है। बड़े लोगों की कहानियां पढ़ा करें, बुजुर्गों के किस्से पढ़ने से फायदा होता है, और हमारे असल बुजुर्ग ये हैं जिनके किस्से कुरान में आगे, हदीसों में आगे। अल्लाह ने पानी वहां जारी कर दिया, कहा वहुज़ी इलैकी, कहा हिला इसको अपनी तरफ, जो दरख्त की शाखें लटक रही थी ना नीचे, तो कहा इसको पकड़ के ना जोर से अपनी तरफ हिला, नखलती खजूरों को तुसाकित अलई की रोतबन जनिया, ये गिरा देगी तुझ पे ताजा ताजा खजूरें। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये है कि ऐसे वक्त में औरत को मूवमेंट करनी चाहिए, आज डॉक्टर्स ने भी बता दिया, जब बेबी डिलीवर नहीं होता तो डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करवाते हैं कि बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो, तो ये जो हिलाना था ना इसमें हरकत मुराद थी। दूसरा ये है कि खजूर, कहते हैं कि ऐसे वक्त में अगर औरत को खजूर दी जाए तो वो जो नकाहत और कमजोरी है वो दूर होती है, और वैसे भी ज्यादा कुछ तो खाया नहीं जा सकता, तो थोड़ी चीज खाई जाए जिसमें एनर्जी हो। कफकुली वशरबी वकर्री आईना, खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो। इससे पता चलता है कि खाने पीने से आंखें ठंडी होती हैं, पर हमारी तो हर वक्त ही ठंडी रहती है। कभी कभी खाएं 4, 10, 12 घंटे के रोजे के बाद तो आंखें ठंडी हो, पर जब पेट में जगह ही ना बने और फिर खाना पड़े तो फिर आंखें ठंडी तो नहीं होती। लेकिन बहरहाल खाने पीने की एक अपनी अहमियत इससे पता चल गई। फरमाए फइम्मा तरयिन्न मिनल बशरी अहदन, अगर तू किसी एक को देख ले इधर कोई बशर तुझे नजर आ जाए, फकूली तो कहना इन्नी नजर तुले रहमानी सौमा, मैं आज के दिन रहमान के लिए रोजा रखे हुए हूँ। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, और आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। बच्चा पैदा हो गया, कहा अब इसको लेके जाओगी बस्ती में, अपनी बिरादरी में, अपने जो गांव में या अपने पाकिस्तान में, सोचे कहोगी क्या, चुप रहना। क्यों? जब हम सच्चे होते हैं ना तो हमें बहुत दलाइल की जरूरत नहीं होती, और अगर हम झूठे होते हैं ना तो जितने मर्जी दलाइल दे लें हमारी बात कोई नहीं मानेगा। ये फैक्ट है, ये कुदरती बात है, खामोशी बेहतर है। और दूसरी बात याद रखिए, जब हम अपने मामले अल्लाह पे डाल देते हैं ना, उफव्विज अम्री इलल्लाह हसबुनल्लाह व नियमल वकील वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून, जब हम ये कुछ कहते हैं ना तो फिर अल्लाह कहता है अब तुम बीच में से हट जाओ, मैं निपटूंगा। अल्लाह पर अंधा एतमाद बंदे की जिंदगी को बदल देता है। यही तवक्कुल मुझे आपको चाहिए। इतनी बड़ी आजमाइश में मरियम है, कोई उसने उस वक्त वजीफा किया, कोई उसने उस वक्त दोस्तों को जमा किया, कोई लोगों को अपना दुखड़ा सुनाया, नहीं, इन्ने नजर तुले रहमानी सोमा। फातत बिही कौमहा तहमिलुहु, फिर ले आई उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम की तरफ। कालू या मरियम लकद जीत शैयन फरिया, अब कौम शुरू हो गई, जिसको अब कहते हैं धान धान की बातें, ए मरियम तू तो बड़ी अजीब चीज लेके आई। यफ्ता हारून माँ का ना बू कि इमरान सऊन, ए मरियम ए हारून की बहन तेरा तो बाप भी कोई बुरा आदमी नहीं था, वो माँ का ना तुम मुकी बगैया, और तेरी माँ जो थी ये कोई बदकिरदार औरत नहीं थी, यानी माँ और बाप की आर दिला रहे। फाशारत इलई, फिर इशारा किया उसने बच्चे की तरफ। कालू, कहने लगे कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कैसे हमसे बात करेगा वो जो गोद में एक बच्चा सा है। हैरत थी ना उनको कि बच्चे से क्या बात करें, लेकिन बच्चा बोल उठा, ये लिख ले आए 30, किसी क्रिश्चियन को दिखानी हो कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पैदा होते क्या बोला, काल इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब वजअलनी नबिया, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारक नई नमा कुंतु, और उसने मुझे बरकत वाला बना दिया, मैं जहां भी रहूं, जमीन पे थे तो बरकत आले थे, आज आसमानों पे हमारा ईमान है कि हजरत ईसा जिंदा है, मेराज के मौके पे नबी सल्लम को मिले थे, जिंदा है, वापिस आएंगे और वो दौर इस्लाम का बेहतरीन दौर होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा, फिर ये अपनी तबई मौत मरेंगे और नबी सल्लम के पहलू में दफन होंगे। उसी की तरफ इशारा है कि मैं जहां भी रहा हूं मैं बड़ी बरकतों में रहूं। आजमाइशें कितनी थी इनकी जिंदगी में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आजमाइशें अल्लाह के रास्ते में आए और लोग उसको खुशी से मान ले उसमें बरकत ही होती है। वाउसानी बिस्सलात, और उसने मुझे नमाज का हुक्म दिया। वस जकाती, और जकात का मा दुम तो है या, जब तक मैं जिंदा रहूं। क्या आज क्रिश्चियनिटी में नमाज है? नहीं है ना। जकात है? नहीं है। ये आज दलील है, जिस तरह आज हमारे दीन में नमाज और जकात है इनके दीन में भी थी, पर जब कौमों के ऊपर ख्वाहिशों का अंबार लगता है ना तो वो भूल जाता है, यही इनके साथ हुआ। वबर्रम भी वालिदती, और मुझे अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, या मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। वलम यजालनी जब्बारन शकिया, और उसने मुझे नहीं बनाया जब्बार और बदबख्त, यानी जबर करने वाला और बदबख्त नहीं बनाया। व सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, ये है असल बात। सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। इससे थोड़ा से फर्क के साथ ऊपर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे याहया की भी बातें 19-20 के फर्क से। अल्लाह ताला कहते हैं सालिक ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम, कौल अल हक अल्लज़ी फीही यमतरून, ये वो बात है जिसके बारे में ये शक करते हैं। बस हम इतना पढ़ेंगे। इस सारी बात में से नतीजा क्या निकला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो खजूरें पकती थी। हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि खजूरों के दरख्त को या खजूरों को हिलाओ, ऐसे ही था ना, दरख्त को, खजूरें पकी और बैतुल लहम, पैलेस्टाइन, सीरिया, ये जहां भी आज भी जाके पूछ लीजिए खजूरें कब पकती हैं, जून जुलाई में पकती हैं। तो ये थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी यही थी। हजरत ईसा के हवारियों को भी नहीं पता था। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत एग्जैक्टली नहीं पता, 6-7 डिफरेंट कॉल है, क्योंकि पीछे हम बात कर चुके हैं, जो लोग लास्ट सैटरडे हमारे साथ थे तो उसमें हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रबी अव्वल के नाम पे एक लेक्चर किया था, जरूर सुनिएगा। नहीं है तो आप नंबर दें, हम आपको व्हाट्सएप पे उसकी फाइल भेजते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 13 दिन जिंदगी के क्या थे ना, तो सफर से लेकर आगे वाले, उसमें हमने ये बात देख ली थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा कल नबी बनेगा, और अरबों में कोई रिवाज नहीं था डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ या ऐसी चीजों को सेलिब्रेट करना, वो वाकयात के साथ लोग चीजों को लेकर चलते थे। बिल्कुल इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का नहीं पता। याद रखिए कि इस्लाम का मिजाज सेलिब्रेशन का नहीं है, पूरे कुरान में है। मैं आपको एक सूरत का नाम देती हूँ, सूरत शोरा, शोरा शायर की जमा, खोलिएगा जाके, ऐसे उसका तर्जुमा पढ़ लें। काफी अंबिया कराम की उसमें कहानी है, जैसे और बहुत जगह है। सारे अंबिया कराम के तذکروں के बाद अल्लाह सुभान व तआला ने उनके मिशन को सलाम किया। नबियों की जिंदगी का मिशन क्या था, पूरे कुरान में इसको हाईलाइट किया गया। तो आज जो 25 दिसंबर के नाम पर क्रिसमस मनाई जाती है, तो समझ लीजिए कि ये असल में हजरत ईसा की यौम विलादत नहीं है। इंजील, जिसको आज के दौर में बाइबल कहें या उनका न्यू टेस्टामेंट कहें, उसमें एक भी रिवायत 25 दिसंबर की नहीं है। हजरत ईसा के बाद उनके 12 हवारी थे, उनकी जिंदगी में भी इसका कोई तसव्वुर नहीं था। फिर ये कहां से आई, आप हिस्ट्री खुद पढ़े, आप अभी मेरे से लिंक ले लें, गूगल पे जाएं, लिखें हिस्ट्री ऑफ ईसा, जीसस, जो भी लिखें आपको बहुत बेशुमार चीजें मिलेंगी। ये रोमन से मुतासिर हुए थे, जैसे आज के दौर में हम पेगन कल्चर से मुतासिर हैं, जैसे पाकिस्तान में रहते हुए हमारे अंदर बहुत सारी रस्म और रिवाज इंडिया से आई हैं, हिंदुइज्म से हम मरूब हैं, उनके शादी ब्याह के तौर तरीके और इन चीजों को मानते हैं ना, इसी तरह से क्रिश्चियंस का जो बिगाड़ था ना, वो दो कौमों की वजह से आया था, रोमन्स और ग्रीक्स, यूनानी जिसको कहते हैं। आप सूरत मरियम, सूरत मायदा की आयतें पढ़ें, वो भी आयत यहाँ कोट कर सकती हूँ, लेकिन बात बोझल ना हो जाए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने मुतालबा किया था कि ईसा अपने रब से कह दे कि जरा हमारे लिए आसमान से मायदा नहीं नाजिल कर देता, हमें एक खाने एक ख्वान दे दे, जैसे यहूद को मनोसलवा मिला था ना, तो नसारा या क्रिश्चियंस ने अल्लाह ताला से मुतालबा करवाया था ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी कि हमें आसमान से खाना मिल जाए, तो उसके ऊपर वो कहते थे कि हमारे लिए वो दिन ईद का दिन होगा, वहां से लफ्ज ईद हमें मिलता है। याद रखिए कि सेलिब्रेट करना हर एक की ख्वाहिश होती है। वो आयत है 114 सूरत मायदा, قال عيسى ابن مريم, हजरत ईसा बिन मरियम ने कहा, اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء, ए अल्लाह हमारे लिए आसमान से ख्वान भेज, खाना भेज, تكون لنا عيدا, हमारे लिए वो ईद का दिन हो जाए, لأولنا وآخرنا, हमारे पिछलों और हमारे बाद वालों के लिए, وآيةً منك, और तेरी तरफ से एक निशानी हो, कि जैसे जमीन के सीने में से तू सब्जियां फल निकालता है, तू आसमान से भी निकाल सकता है, वरज़ुकना अंता खैरुर राज़िकीन, और तू हमें रिस्क दे, तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। यहाँ लफ्ज़ ईद है। कुरान की ये दो चीजें आप जमा कर लें, आपको बनी ये क्रिश्चियंस का ये मामला कि ये 25 दिसंबर कहाँ से आया, इसका रब्त मिल जाएगा जब दूसरी कौमों से मुतासिर होते हैं मुसलमान तो वो उनकी देखा देखी कुछ काम करते हैं। जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये क्रिसमस का 25 दिसंबर के साथ ताल्लुक मिलता है, ये एक बादशाह ने, रोमन बादशाह था, उसने इन्वेंट किया था। और अगर बाद में आगे जाके आपको बताऊं कि ईद उल मिलादुन नबी, जिसको आज 12 रबीउल अव्वल के साथ कहते हैं, ये भी एक बादशाह ही ने दिया। मैं कुछ पढ़ के सुना दूंगी चीजें, आप खुद समझ जाएंगे कि ये बातें मेरे मन की इख्तरा नहीं है, ये सब कुछ तारीख में रिकॉर्ड है, आप किताबें पढ़ के देख लीजिए। रोमन बादशाह ने ये दिन 25 दिसंबर क्यों रखा? इसलिए कि रोमन्स जो थे ना, ये बुत परस्त थे उस दौर में, और उनका ख्याल क्या था कि दिसंबर का महीना बड़े लोगों की दुनिया में आमद का महीना है, बरकत आला समझते थे। इन्होंने बहुत चक्कर चलाए, बहुत वाहवेले किए कि किसी भी तरीके से हम इस चीज को मना सके, और एकदम नहीं हुआ। ये जो क्रिस मिस है, ये क्या है? क्रिस किसको कहते हैं? ईसा को। और ये क्राइस्ट से है, ये जो सूली पे चढ़ने वाला ना, हमें तो ये कहना भी नहीं चाहिए ना इस तरह से, क्राइस्ट। और क्रिस और मिस कहते हैं सेलिब्रेशन को। क्रिसमस का मानी क्या है? जीजस की सेलिब्रेशन। आप इसको अरबी में मूव करिए ना, तो इसका मानी क्या बनता है? ईद मिलादुन नबी। लफ्ज़ जो ईद मिलादुन नबी है, अगर हमारे जहन में तो फौरन नबी सल्लम का नाम आता है ना, लेकिन मिलाद अरबी जुबान में बर्थडे को कहते हैं, पैदा होने का दिन, और ईद कहते हैं खुशी का दिन। और नबी, ईद मिलादुन नबी को 12 रबी अव्वल के साथ जोड़ेंगे तो नबी सल्लम की विलादत का दिन, 25 दिसंबर के साथ हजरत ईसा अलैहि सलाम से जोड़ेंगे तो ईद मिलादुन नबी हजरत ईसा का बन गया। सर्दियों में कभी खजूरें नहीं पकी, ना तो कुरान में इसके बारे में कुछ है और ना हदीस में, लेकिन सिर्फ एक आयत रेफरेंस बन गई कि हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा कि खजूरें टूटी हुई तेरे ऊपर गिरेंगी और खाएंगी। और बहुत सारे फिगर फैक्ट्स हैं, मैंने इसलिए ज्यादा नहीं आगे बात की कि बात बहुत जल होगी, और मेरे नहीं ख्याल आप में से किसी को कोई इससे इंटरेस्ट होगा, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहि सलाम की विलादत नहीं है और उसको जबरदस्ती से जोड़ा गया सेलिब्रेशन के लिए, ये ऐसा क्यों किया जाता है? जब कौमें नबियों का पैगाम भूल जाती है ना, तो कुछ तो करना होता है ना। हमारे यहाँ उर्दू में क्या इंग्लिश में कहते हैं? डू समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहते हैं ना, चलो भाई कुछ तो कर लें। अब जब नबियों ने जो दीन दिया वो तो लिया नहीं, अभी आपने देखा हजरत ईसा ने नमाज का जिक्र किया, जकात का जिक्र किया, उसको तो छोड़ दिया ना, तो अंदर एक गिल्ट होता है, एहसास नदामत होता है कौमों में, वो कहते हैं हम अपने नबियों के तरीके पे नहीं चल रहे। फिर वो क्या करते हैं? दिखावे की कुछ मोहब्बतें और उनका इजहार पैदा करते हैं। कोई ये ना कहे कि हमें जीजस से प्यार ही नहीं है, तो जीजस से प्यार का तरीका क्या है? कि हम उनकी बर्थडे मनाएं। देखिए उर्दू में हम अपनी जुबान में एक लफ्ज बोलते हैं चापलूसी। कुछ सासें वैसी बड़ी अच्छी होती हैं, उनको इंतजार नहीं होता कि कोई बाहर से मेरी दोस्त मेरे घर आए तो फिर मैं अपनी बहू की खिदमत करूं या उसका ख्याल रखूं, हाँ, या उसकी तारीफ करूं, वो हर वक्त ही अच्छी होती हैं। लेकिन कुछ जरा सी डिप्लोमेटिक सासें होती हैं, दूसरों को देखा, बैठो आओ खाओ मेरी बच्ची मेरी लाडली, हाँ, और उधर मेहमान गए तो सास की टोन बदल गई। फर्क क्या दोनों में? पहले की, पहली के दिल से निकलता है, दूसरी का दिल से नहीं निकलता। बस ये कहानी थी क्रिश्चियंस की, इससे ज्यादा मुझे नहीं कोई इसमें इंटरेस्ट। सरासर बुत परस्ताना, पेगनिज्म, मुशरिकाना त्योहार है ये, हर एक की कहानी है। सेंटा क्लारा कौन है? इनका देवता, और उसका खुशियां बांटना, आप एक एक किरदार का नाम लेके पढ़ें और फिर उसके ऊपर बात करके देख लें। अगर मेरे सामने सारे यंगस्टर बैठे होते तो हो सकता है मैं उनको कुछ लिंक्स दिखाती या कम से कम बताती कि आप जाके इसमें से देखें। सरासर इसमें शिरक है, लेकिन अफसोस, और शायद अफसोस अगर आज ये प्रोजेक्टर काम करता तो मैं आपके लिए कुछ पिक्चर सेव करके लाई थी। कल जिस चीज से मैं डिप्रेस हुई, मेरी थोड़ी सी आज तबीयत बोझल है, तो मैं हमेशा जब तबीयत बोझल होती है ना तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों और अचानक हुआ होता है। तो कल जो मैंने पिक्चर्स देखी थी, मैं कह सकती हूँ अल्लाह के हुक्म के, तो उसके बाद मैं तकलीफ में चली गई, मेरा अंदर ऐसे जल रहा था। मुस्लिम फैमिली सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, आप उनके टेबल को देख लीजिए, हर चीज जिसमें क्रिसमस के वो बहुत तस्वीरें, खाना सेलिब्रेशन, यानी सिर्फ उस टेबल पे नैपकिन प्लेटों पे मेरा ले कई हजार लगा होगा। फिर उसके बाद उनका वो सेंटा क्लारा खड़ा है, फिर उनके बुल खड़े हैं, तो 110%। अगर मुझे कोई वो मुस्लिम फैमिली के नाम से ना भेजता और साथ जो तस्वीरें थी वो तो मैं देख नहीं सकी, ना टांगे ढकी हुई और ना बाजू और बच्चियों के, और अपनी आधे कपड़ों वाली तस्वीरें जो है वो प्रिंट आउट कर करके तो वहां सजाई हुई है। और मुस्लिम फैमिली, और मुझे जिन्होंने भेजा उन्होंने कहा ये जिनके घर से आई है वो लास्ट वीक उनके घर में खत्मुल कुरान हुआ था, खत्म भी उन्होंने किया, ये नहीं है कि वो सिर्फ क्रिसमस मनाते हैं। और अगर मुझे ये ना कहते ना ये मुस्लिम फैमिली, तो वो बच्चियां जो थी मैं पहचानती भी ना कि ये मुस्लिम है, और मुझे नहीं पता वो हो सकते सारी नॉन मुस्लिम ही हो, लेकिन वल्लाह ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां नहीं लग रही थी, उसमें वो सारे बुत भी खड़े थे। आज हम कितने आराम से कहते हैं मैरी क्रिसमस। आप कहते हैं कि इस्लाम के ब्राहे रा, आप किसी को ना सोचें प्लीज, अगर आप भी को जानते हैं और आपके पता नहीं मैंने जो देखी है वो किस मुल्क की है आपको तो ये पता ही नहीं है ना, आप खुद खोल लें, आप कहेंगे आपने कहाँ देखी, आप गूगल पे लिखिए जाके, आज तो आपको इतना आसान हो गया रिसर्च करना, आप एक लफ्ज लिखते हैं आपको 10 चीजें सामने आ जाती हैं, फिर लोग फखर से डलते। मुझे इस पे रोना तो आया बहुत, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है ना, तो मैंने उन्हें कहा जो मुझे हुआ है ना बस ये मैं आपको बता नहीं सकती, किया है ना तो उसको इस चार दीवारी के अंदर रखो। आप मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं, मुझे कहां से मिली है, मुझे कोई किसी आप में से तो किसी ने नहीं भेजी ना, ये मुझे आपके नेट ने दी है, और पूरी कहानियां लिखी होती हैं। और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ रही थी कि एक वक्त आएगा कि रात के वक्त इंसान गुनाह करेगा, अल्लाह रात के पर्दे में उसके ऐब छुपा लेगा, लेकिन वो अगले दिन सुबह उठ के लोगों को अपने गुनाह जाहिर करेगा। आपने फरमाया कि एक ऐसा दौर फितनों का आ रहा है कि एक इंसान सुबह उठेगा तो मुसलमान होगा, जब रात को सोएगा तो कुफर पे सोएगा, और अगले दिन फिर उठेगा तो इस्लाम पे उठेगा। सुबह हमारी हो सकता है फजर के साथ हो जाए और नमाज रोजे से हो ही जाए, लेकिन आज के दौर में रातें किधर जाती हैं। फिर इसी तरह एक और किसी बहुत दूर दुनिया के कोने में हमारी एक सिस्टर की शेयरिंग 2 दिन पहले, उस दिन भी मेरी तबीयत पे बहुत बोझ आया, वो रो रही थी क्लासेस में आजकल लोग कम है, क्यों वजह कम क्या है, ये कुछ मना रहे हैं, गोरों से ज्यादा हम मनाने लग गए हैं, हमारे बच्चों के अंदर से वो एहसास जिया जाता रहा। चलिए वो तो छोड़ दे, आप कहेंगे शायद इनको ये इनकी अपनी बातें ये वो है, हम रबीउल अव्वल की हैसियत देखते हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है, कोई मुसलमान ये कह नहीं सकता कि मैं अपने नबी से प्यार नहीं करता, ये हमारी खून के अंदर लगा हुआ है। गैर मुस्लिम भी इसकी दलील देते हैं कि ये मुसलमान नमाजें पढ़े ना पढ़े, ये रोजे रखे ना रखे, ये सूद ले ना ले, ये नबी से प्यार बहुत करते हैं, जब इनके नबी पे कोई बात होती है ना तो ये उसके लिए मरने मारने को तैयार होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो हम आज, पहले तो मैं नाम पे थोड़ी सी बात कर लूं, और आप मेरे आप में से कुछ सिस्टर जरूर मेरी तस्दीक करेंगी कि आज के लफ्ज में जो आप अखबारों में पढ़ते हैं मैसेजेस में, मैंने 15-20 मैसेजेस सिर्फ आज ही सोच से जमा किए हुए थे कि आपको दिखाऊं कि रबीउल अव्वल और आज का मुसलमान, नबी सल्लम के दौर में तो हमने देख लिया कि क्या हुआ था और लोग क्या करते थे, आज का मुसलमान इस नाते से क्या कुछ करता है, गले में सबज रंग की बत्तियां लपेटी हुई है और एक हाथ में सबज झंडा और दूसरे हाथ में झंडा और नारे लगा रहे हैं, इतना हवनक और इतना अजीब लग रहा है। एक आदमी दीन के नाम पे तो उसके ऊपर कमेंट लिखा हुआ था कि अगर ये तस्वीर गैर मुस्लिम देखें तो वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचेंगे, बिल्कुल क्रेजी पागल दीवानापन। अब यहां मैं जो आई हूं तो मैं अपने गले में सबज रंग की बत्तियां और जलती बुझती पहन के आ जाऊं और एक हाथ में झंडा और मैं नारे लगवाऊं और लगाऊं, आप सच बताएं कि आपको कैसा फील होगा आज मैं और आप अपने ऊपर लेकर इसको सोचें। आज हम मुसलमान किधर चले गए, हमें समझ ही नहीं आती हम क्या कर करा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। और ये जो लफ्ज है ना ईद मिलादुन नबी, याद रखिए ये एकदम नहीं बना। एक अखबार की मैं न्यूज सुन रही थी, 1984 का अखबार था, जंग या नए वक्त होगा पाकिस्तान में, तो उसकी एक रिपोर्ट कोई साहब थे तो पढ़ के सुना रहे थे कि उस दौर में 84 में इसको 12 वफात कहते थे, 12 वफात कहते थे, 12 वफात हुआ था पहले, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी 12 को, इसमें कोई शक नहीं, पैदा हुए थे कि नहीं ये शक है, हो भी सकती है, चले अगर हो गई तो अपने आप से पूछिए कि अगर पैदाइश भी उसी दिन हुई और वफात भी उसी दिन हुई तो क्या जज्बा आ गया था, खुशी वाले घर में कोई फौत हो जाए तो खुशी मनाएंगे कि गम मनाएंगे, आप बताइए मुझे। गम हमेशा दिल पे छा जाता है, गम को तो गम कहते हैं इसलिए कि ये दिल पे छा जाता है। غم دل پہ بھاری ہوتا ہے. جس دن نبی کی اگر پیدائش ہوئی تھی تو اسی دن اگر فوت ہو گئے تھے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا پھر وہ غم تھوکا کے خوشی ہوگی. چلے ہم یہ کہیں نا کہ وفات کا شک ہے, پیدائش حقیقی طور پہ 12 ہے, اور ہمیں محبت ہی اتنی ہے جو مرضی ہو ہم نے تو کرنا کرانا ہے تو ہم تو کریں گے, تو بات سمجھ آ جائے گی. چلیے اب ہوا کیا کہ پہلے 12 وفات تھا, کچھ عرصے بعد ایک مظہر نام کا تھا, میرے پاس لکھا ہوا ہے اگر آپ چاہیں گے, اور وقت اینڈ پہ ہوا تو میں تھوڑی سی کوٹیشن آپ کو سنا دوں گی پڑھ کے. یہ بھی ایک دور کے بادشاہ نے ہی عام کیا تھا. سب سے پہلے اس کا نام آیا تھا جشن میلاد النبی, جشن کا لفظ آیا تھا, عید کا لفظ نہیں تھا, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ عید ایک ریچول ہے. ہماری دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے ایک دن لوگوں کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا, پوچھا بھائی خیریت ہے آج کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا دور جاہلیت میں ہم آج کے دن میں اس طرح کے کام کرتے تھے, خوشی مناتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہیں دو عیدیں دے دی, عید الفطر روزے رکھتے ہیں اس کا شکرانہ, اور عید الاضحیٰ قربانی اور حج کا تحفہ, اس کے بعد تیسری کوئی عید نہیں ہے. عید نہیں تھا پہلے, جشن تھا. اور میں وہ رپورٹ جو سن رہی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان میں ایک کوئی آرگنائزیشن کا نام بھی وہ لے رہے تھے. میں ان چیزوں پہ اتنا امفسائز نہیں کرتی, اگر آپ کو میری بات پہ اعتبار ہے میں آپ کو وہ ان کا لنک ہی دے دوں گی جن کی زبان سے سن رہی تھی میں, کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں 19 میرا خیال ہے یہ 19ویں صدی کے درمیان میں کہیں ہوا, جو بریلوی جماعت کے بڑے ہیں ان کا ایک کوئی خاص نام تھا جو شیعوں سے بہت انفلوئنس تھے, انہوں نے کہا کہ جشن لفظ تو اسلام میں نہیں ہے, تو جشن کو نکالا تو عید کر دیا, کہ عید تو اسلامی کہنا, تو جشن لفظ عید میں آ گیا تو لوگ عید میلاد النبی کہنے لگ گئے. اب جب عید کا لفظ میلاد النبی کے ساتھ لگ گیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کس نے منائی, تو کہتے ہیں جی ابو لہب نے منائی تھی. وہ کیسے منائی تھی؟ پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ کسی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا, سارا جسم اس کا آگ میں جل رہا اور اس کی ایک انگلی آگ سے باہر ہے. کہا بھی سناؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کے کہ میرے بھائی کے گھر میں اتنا اچھا بچہ ہو گیا, تو میں نے اس انگلی سے کہا تھا سویبہ تو آزاد ہے, تو اس کی برکت سے اللہ نے مجھے اس انگلی سے آزاد کی, اور شاید ہر پیر کے دن مجھے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات دیتا. اس کو انہوں نے پوری عید میلاد النبی بنا لیا. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہم ابو لہب کی سنت مانیں گے یا ابو بکر کی؟ قرآن میں دونوں کی آیتیں موجود ہیں, تب بچدا ابی لہب و تب ما اغنان ہو مال ہو و ما کسب سیصلا نار ذات لہب و امراته حمالت فی الخطب فی جی دیہا حبل من مسد. واحد شخص ہے پورے قرآن میں جس کا نام لے کے رسوا کیا اس کو اللہ نے, اس کے بارے میں کچھ نہیں اور کہا ہوا, نام لے کے رسوا کیا ہوا. کیا ہم اس کی سنتیں بنائیں گے؟ آپ سوچی. اور دوسری بات ہے کہ ابو لہب نے تو خوشی منائی تھی اس دن محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے کی, اس کے بھائی کا بیٹا, لیکن جس دن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے تو اسی ابو لہب نے کیا کہا؟ تبلک, اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ, تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. نبی کی ذات سے محبت کرنے سے اگر جنت ملتی تو سب سے پہلے واللہ ہی ابو طالب اور ابو لہب ہوتے جنت میں. نبی کی بات سے کس کو محبت ہے؟ وہ ابو بکر کو تھی, وہ عمر کو تھی, وہ عثمان کو تھی, وہ علی کو تھی, وہ ہمارے تبا تابعین کو تھی, وہ آئمہ کرام کو تھی, وہ خلفۂ راشدین کو تھی, وہ محدثین کرام کو تھی, وہ ہمارے بزرگوں کو تھی. دوسری بات ہے, آپ کہتے نہیں کچھ تو کرنا ہے نا, تو کچھ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے میرے پاس سلائڈ میں. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن امت کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں روزہ رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے یہ ڈن ہے, تو کیوں نہ ہم سال میں ایک بار منانے کے بجائے ہفتے میں 4 بار منائیں؟ کیسے؟ ہر پیر کو روزہ رکھیے, کہ اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ پھر آپ دیکھیے کہ جب بازاری باتیں ہوتی ہیں نا, صرف بازاری محبت کی باتیں ہوتی ہیں, تو پھر حقیقت یہ ہے کہ کہانی بدل جاتی ہے. یہ میرے پاس ایک امیج ہے, دور سے آپ کو دکھے گا نہیں, آپ کے سامنے, اگر آپ چاہیں واٹس ایپ پہ اپنا نمبر دے دیں, بعد میں آپ کو بھیجیں گے, پڑھ کے سناتی ہوں. इन्होंने दो चीजों को तकाबुल के ऊपर लिखा हुआ है, अल अमान बिल हफीज, यानी कि हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं, अमान में आते हैं कि अल्लाह हमें ना पकड़े। ये क्रिश्चियंस का चर्च जिसके अंदर उनका क्रॉस लगा हुआ है हजरत ईसा के नाम पे, ये किसी मस्जिद का मिंबर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का निशान उस पूरे मिंबर को, यानी जब लकड़ी का बना होता है ना कुर्सी है तो उसकी बैक ये जूता बना हुआ है। इसके नीचे लिखा क्या हुआ है मैं पढ़ के सुना देती हूँ ताकि पता तो चले ना कि आज का मुसलमान कर क्या रहा है। ईसाइयों ने सलीब को पहले तबरुक के तौर पर चर्च में पहुंचाया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इबादत शुरू कर दी, और हमने पहले जूते की छवि बनाई सीने पर लगाया, आहिस्ता आहिस्ता इसे गलियों में सजाया, अब हालत यहां तक पहुंच चुकी है, इस जूते को मस्जिद में मिंबरे रसूल पर लाकर रख दिया। अल्लाह की बना, इमेजिन कीजिए ये इज्जत है कि बेइज्जती। और आपको पता है कि इस जूते के निशान के अंदर नबी सल्लम का नाम लिखा होता है, आप अपना जूता ले और आप उसके नीचे नहीं ऊपर ही जरा अपने अब्बा जी का नाम तो लिखे। ये एक और शेयरिंग है, इसका नाम है शॉर्टकट। ये क्यों करते हैं लोग, शॉर्टकट चाहते हैं। कौन रोज रोज उठकर रात को इबादत करे, साल में एक रात बना लेते हैं शबे बरात के नाम से, वही काफी है। कौन रोज रोज नबी से मोहब्बत का इजहार करे, साल में एक दिन रख लेते हैं ईद मिलाद के नाम से, वही काफी है। रमजान की तमाम ताक रातों में जाग कर कौन शबे कदर को तलाश करे, 27 रमजान की रात फिक्स कर लेते हैं शबे कदर के लिए। बात सच है कि झूठ, कड़वी तो है लेकिन सच कड़वा ही होता है। फिर आप देखिए कि कुछ नाम होते हैं ना, हमें किसी फिरके से किसी मसलक से कोई आर नहीं है, सब अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह को उनका मामला है, हम किसी का नाम लेके कुछ नहीं करते। लेकिन आज आप देखिए कि जो कुछ लोग करते कराते हैं, खास तौर पे ये मेरा रबीउल अव्वल के नाते से, किसी सही हदीस, किसी मनगढ़ंत हदीस से कोई साबित कर दे तो साबित नहीं होता। लोग कहते नहीं नबी सल्लम बहुत आजिज मिजाज थे, वो अपनी सेलिब्रेशन नहीं करते थे, जैसे हम कहते हैं नहीं मैं अपने आप को अहमियत नहीं देती, मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाती, बच्चों की मनाती हूँ। तो अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है, क्या उनको अल्लाह के नबी से प्यार नहीं था? आप कहते हैं अबू बकर साहब को टाइम ही नहीं मिला, दो तो साल थे और इतने फितने थे, ठीक है। उमर फारूक को 10 साल तक क्यों ख्याल ना आया, हजरत अली को, हजरत उस्मान को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुछ तो करें? फर्क साफ जाहिर है कि मोहब्बत के नाम पर उनको दलीलें देनी नहीं पड़ती जिनका अमल काफी होता है, सीधी सी बात है। ये एक और शेयरिंग है, अकल पर ताले। रबी अव्वल आते ही चौक चौराहों घरों पर रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर आवेज़ा की जाती है। कोई हमें बताएगा कि रोजा या मजार वफात की अलामत है या पैदाइश की? यानी मजार दिखाते हैं ना आपका। और आप देखिए कि मैं एक जिस दिन आप लोगों में से जो लोग आए थे सैटरडे को, 2-3 मिनट का एक स्लॉट दिखाया था आवाज बंद करके, कि रबी अव्वल के नाम पे कैसे लोगों ने पूरा मेला लगाया हुआ था, जो कुछ किया जाता है। और अमूमन देखिए बाजार सजते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में आज भी देहातों में गलियों में रंग रोगन होता है। मुझे बचपन का एक वाकया याद है, सियालकोट हम गए थे, वही मेरे लाशौर में, क्योंकि जहां हम बाहर पहले रहते थे वहां नहीं देखा था। सियालकोट में किसी रिलेटिव के घर गए थे तो उनके साथ बाहर गली में निकले तो सड़क पे, यानी गलियां जो होती थी उसमें सब्ज रंग के झंडे और फूलों की पत्तियां और वो जो डमी मॉडल्स बने हुए थे, जरा सा पढ़िएगा, जरा शऊर बेदार करने की ये चीजें हैं। मस्जिदें वीरान करके वो बाजार सजा रहे हैं, इस कौम के नौजवान सुन्नत भुला रहे हैं। जिस नबी को नापसंद थे ये शोर शराबे, इसी जात का ढोल के साथ जश्न मना रहे हैं। कब सहाबा ने लगाए थे बाजारों में डेरे, जश्ने नबी की आड़ में बिदत फैला रहे हैं। वक्ते नजा में भी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की नमाज की फिक्र, आज वो लोग नमाज गंवा कर जश्न मना रहे हैं। सुन्नत और हदीस का दामन छोड़कर क्यों लोग सवाब की आड़ में गुनाह कमा रहे हैं? बास लोग इतने मसरूफ हो जाते हैं इन चीजों में कि फिर उनके पास नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं होता। ये किसी की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, आज फजर की नमाज में मेरी निगाहें इन लोगों को खोजती रही जो बेचारे रात देर तक अपने घरों को, गलियों को, चौराहों को सजाते रहे, महज ये बताने के लिए कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। मस्जिदें खुद भी सजी रही मगर नमाजियों के लिए रोती रही। वाह रे मुसलमान, अब कोई ये ना कहे कि ग्रुप में मसलकी या मुतनाज़े बातें ना करे, ये मसलक या मुतनाज़े बात नहीं। भाइयों मुसलमान बनो, सच्चे उम्मती बनो, मगर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। बात तो समझ आती है ना हमें। एक और सुनिएगा। किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, कि जो मेरे गम में घुला गया इसे मैंने दिल से भुला दिया। जो जमाल रुए हयात था, जो दलीले राहे निजात था, इसी राहबर के नकुशे पा को मुसाफिरों ने मिटा दिया। मैं तेरे मजार की जालियों ही की मदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजां का जाल बिछा दिया। तेरे हुस्ने खुल की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी, मैं इसी में खुश हूं कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। तेरे सौर और बदर के बाब के मैं वरक उलट के गुजर गया, मुझे सिर्फ तेरी हकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। कभी ये इनायत कम नजर, तेरे दिल में ये भी कसक हुई, जो तबस्सुम रुहे ज़ीस था इसे तेरे गम ने रुला दिया। ये को प्रोफेसर इनायत अली खान उनकी पोइम है। बात तो सच है ना। अब देखिए, नबी सल्लम ने कहा कि बदतरीन जगह बाजार है, और आज हम बाजारों में निकल आते हैं, और आपने फरमाया कि किसी जगह के बेहतरीन जगह क्या होती है, मस्जिद। आज मस्जिदों की क्या हालत है? आपके स्ट्रोमन में 3 मस्जिदें तो मुझे भी पता है, अब शायद और भी हों। आप में से जिनके जिधर जाते हैं ना, आज जाके उनसे पूछिएगा फजर में कितने नमाजी होते हैं, जोहर में कितने होते हैं, असर में कितने, और मगरिब में कितने हैं, तो आपको ये बातें समझ आएंगी। ये बाजारी मोहब्बत करने कराने के लिए नबी आए होते तो वल्लाही ओहद और ओहद के बाद हमारुल असद ना होती। जो लोग हमारे साथ रुहुल कुरान कर रहे हैं उनको पता कल का सबक क्या था, वो तो जियाले थे, वो तो वाकई ये गाजी तेरे बुरसरार बंदे, जख्मों में चूर, 70 लाशें घरों में, कोई बंदा सलामत नहीं लग रहा। और नबी ने कहा कि दोबारा उठो, चलते हैं अबू सुफियान के लश्कर का पीछा करें, कहीं वो वापस ना आ जाए। चल पड़े, हम होते तो वही पता नहीं क्या कुछ कह को के पीछे आते। बातें बहुत सी है, लेकिन एक आखिरी बात शेयर करके अपनी बात को पूरा करूंगी, एक सोच के साथ, कि अल्लाह सुबहाना ताला हमारी आंखें खोल दे। टॉपिक है, कैसा है ये इश्क। एक बच्चे ने एक उस्ताद को अपने घर मजमून पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया, यानी घर में जैसे ट्यूटरिंग के लिए बुलाया जाता है। उस्ताद ने उसे टॉपिक समझाया और कहा कि आज शाम में घर आकर इसका टेस्ट लूंगा, इसकी प्रैक्टिस करके टेस्ट तैयार कर लेना। उस्ताद जब शाम को बच्चे के घर गए तो देखा कि गली में कालीन बिछा हुआ था, जिस पर गुलाब के फूलों की पत्तियां इसे ढांपे हुए थी। गली के दोनों तरफ के तमाम घरों की दीवारों पर हर रंग की बत्तियां जल रही थी, और गली के ऊपर रंग बिरंगी झंडियों की चादर तनी हुई थी। आखिर तक उस्ताद जब गली में से गुजरकर बच्चे के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो इन पर छत से फूलों की बारिश बरसाई गई, और फिजा मरहबा या उस्ताद, मरहबा या उस्ताद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। घर के दरवाजे पर बच्चे ने उस्ताद का पुरतपाक इस्तकबाल किया, यानी वार्म वेलकम किया उसको, और उस्ताद के हाथों को झुककर अदब से चूमा और इन्हें आंखों पर लगाया। उस्ताद ने पूछा, बेटा ये सब क्या है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि उस्तादे मोहतरम, मुझे आपसे वालेहाना प्यार, मोहब्बत, अकीदत और इश्क है। आज आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं तो ये सारा इंतजाम आपकी आमद की खुशी में आपके इस्तकबाल के लिए मैंने किया है, ताकि आप मुझसे राजी और खुश हो जाएं। उस्ताद ने फरमाया कि अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने वो टेस्ट तैयार कर लिया, यानी जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो कर लिया? तो बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम, दरअसल आपके इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ रहा, इसलिए मैं वो टेस्ट तैयार नहीं कर सका। तो उस्ताद ने फरमाया कि बेटा, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ और जिस काम से मैंने तुमसे राजी और खुश होना था, वो तो ये टेस्ट था जो तुमने तैयार ही नहीं किया, और जिस काम के करने के लिए मैंने एक मर्तबा भी आपको नहीं कहा था, आपने इस काम में अपना कीमती वक्त और पैसा लगाकर मुझे खुश करने का कैसे सोच लिया? जिस काम के करने का मैंने कहा ही नहीं, इस काम से भला मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? इस जुमले को दोबारा सुने। जिस काम के करने का मैंने कहा ही नहीं, मैं उस काम से भला खुश कैसे हो सकता हूँ? और जिस काम से मैंने खुश होना था वो आपने किया ही नहीं। आपके खलूस और जज्बे पर मुझे कोई शक नहीं बेटा, इस जज्बे की तकमील इस रास्ते से कभी नहीं हो सकती जो आपको पसंद हो, बल्कि सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है जो मुझे पसंद हो। बस यही हकीकत हमारे अपने नबी से इश्क व मोहब्बत की हमारी भी है। हमें इस मोहब्बत का बुखार सिर्फ रबीउल अव्वल में होता है। अगर हम अपने नबी को राजी और खुश करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें तरीका भी वही इख्तियार करना होगा जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और सहाबा कराम ने जिस पर अमल करके दिखाया था। बेशक हमारे खलूस और इश्क की सच्चाई में कोई शक नहीं, लेकिन महबूब राजी इसी तरीके से होता है जो महबूब को पसंद हो, ना कि आशिक को पसंद हो। और वो एक ही तरीका है कि हुक्म अल्लाह का हो और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिंदगी इसी महबूब की सुन्नतों की इत्तबा में गुजर जाए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस और मुनाजरा नहीं, बस सिर्फ आसान लफ्ज में अपने ही भाइयों को सादा सी दावत फिक्र है, इस उम्मीद के साथ कि शायद के तर उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। तेरे हुस्न खुल की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी, मैं इसी में खुश हूं कि शहर के दरो बाम को सजा सजा तो दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इन चंद शेयरिंग्स के बाद आपका दिल इस पे तो मुतमईन होगा कि रियलिटी में ये कुछ नहीं था, क्योंकि इख्तलाफ कौन करता है जिसको असल नहीं पता होती। ये क्यों हम कहें कि ये मनाना जायज है कि ना जायज, कोई जरूरत नहीं। असल पढ़ लीजिए, मैं आप सबको असाइनमेंट देती हूँ, घर जाए, कुछ लेक्चर्स भी हैं ऑनलाइन पे देखिएगा। रबी अव्वल के पेज पर आपको पुराने लेक्चर्स मिलेंगे, क्या मनाऊं वैलेंटाइन या रबी अव्वल, तब फरवरी में था, आज से 5-6 साल पहले की बात है, वो लेक्चर सुन लीजिए। एक लेक्चर है, अगर नबी सल्लम हमारे घर आए तो क्या करूंगी, आने दूंगी अंदर या अपने घर की कुछ चीजें छुपाऊंगी पहले। असल बात देखिए, मोहब्बत वो है जो मैं और आप एक दूसरे से चाहते हैं। आपके घर मैं आऊं और आप मेरे घर आए तो ये सारा जाहिर का इंतमाम तो मैं और आप करें एक दूसरे के लिए, लेकिन हम बातें वो करें जो एक दूसरे को चुभने वाली हो, दुख देने वाली हो, तो क्या उस मुलाकात में खुशी होगी। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यामत के दिन नबी वहां पुकार लगाएंगे, इन्ना हाजल कौमी तखजु हाजल कुराना महजूरा। अल्लाह, ये है मेरी वो कौम जिसने इस कुरान को छोड़ा हुआ था पकड़ने के बावजूद, तो पकड़ा तो आज भी हुआ है, छोड़ना है। कुछ चीजें रह गई हैं, कल एक हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है अगर अल्लाह ने चाहा तो, उम्मीद है कि अच्छी तरह होगा। ये स्टोवनर में है, बाजी के पास पीछे होंगे उसके फ्लायर्स, कल स्टोवनर में 4 से लेकर 6 बजे का बहुत शार्प कंसाइज सा टाइम है, उसके बाद खाना वगैरह। तो ये स्टोवनर सेंटर के बिल्कुल सामने एक वो ग्रो, क्या बोलते हैं उसको, बुनेगो, बुनेगो, जिनको पता है वो बता दे, और बाजी के पास यकीनन होंगे, आप इनसे ले लीजिए, फार्म हाउस है, उसमें कल हो रहा है, और उसमें इंशाल्लाह हम मजीद बातें सीखेंगे जो आज सीखी है उससे मुख्तलिफ होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह फरमा दे। कोई बात आप शेयर करना चाहें इन बातों को सुनकर तो पूछ लें। आज दिल बड़ा उदास है, बाजी ने जो बात सुनाई थी मुझे, अपना मुहासबा ही हो रहा था कि ये जगह अब हमें नहीं मिलेगी ना, ऐसे ही है फिलहाल। लोगों का तो ये फैसला है, अल्लाह के फैसले आसमानों में। आज मुझे वो जगह याद आ रही है कि जहाँ मैं इससे पहले आई थी आप लोगों की क्लास में, जो सामने शिरक है चर्च में, तो वो चली गई थी तो ये मिली थी, तो दुआ पढ़े कि ये जाए तो इससे अच्छी जगह मिले। इससे अल्लाह ताला हमें ये भी सिखाता है कि जगहों से प्यार नहीं करना। लेकिन मैं ये सोचती थी जब भी इधर आती थी मुझे खुशी होती थी, हम इधर तब भी आते थे जब हमारा अपना रिकोवाइन वाला स्कूल नहीं था, तो मैं अक्सर चुपके चुपके अल्लाह ताला से कहती थी, अल्लाह जी आपने इनको ये कुछ दिया हुआ है तो हमें भी दे दे, फिर अल्लाह ने इससे भी बड़ा हमें दे दिया। तो आज दिल बहुत जल है, सच्ची बताऊं कि पता नहीं हमने शायद इसका हक नहीं अदा किया। स्ट्रोमन वालों के लिए जगह बहुत बड़ी नेमत थी, इधर 100 लोग भी आ सकते थे, तो हो सकता है 10 आते हो, तो अल्लाह ने कहा चलो फिर जाओगे तो मैं छोटा सा कमरा ले देते हैं। तो जरूर सोचिए और दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा अजिरना फी मुसीबतना वखलुफ लना फीहा, कि अल्लाह हमें इसका बेहतर बदला दे और इसके बदले में हमें अजर भी अता कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिनहा, रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरदाहु व अदखिलना बिरहमतिक फी इबादिकस सालिहीन। अल्लाह ताला नेमतों की नाकदरी से बचाए। तो मुझे अभी एक और दर्स है वहां पहुंचना है, इसलिए आप लोग अब्बा जी के साथ जो भी डिस्कशन जो करना चाहें जो भी चाहें तो मुझे इजाजत दे दीजिए यहाँ पे। इजाजत है इंशाल्लाह। कल किस किस की उम्मीद रखूँ, किस किस का इंतजार करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप आके थैंक यू बोल दें अपने मेहमानों को। पता, आपका सवाल यह है कि एक मुसलमान लड़का जब एक नॉर्वेजियन लड़की के साथ शादी करता है तो इसका क्या हुक्म है, या ये क्या, यही सवाल है ना आपका?
वो निकाह करते हैं, कहते हैं कि नहीं निकाह प्रॉपर उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद तो ये जो हमारे वो इस्लाम की वो पैरवी तो नहीं ना कहते जैसे कि
ठीक,
हम लोग करते हैं,
यही मेरा
बस
आपको
एक निकाह
जवाब
हो
था
गया दैट्स
कि
इट।
जी, उसका जवाब यही था कि ये देखिए कि वो लड़का खुद कैसा है। आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान लड़के के साथ एक नॉर्वेजियन लड़की है और वो नॉन मुस्लिम है, तो वो लड़का खुद किस टाइप का मुस्लिम है? अगर वो भी प्रैक्टिसिंग नहीं तो वो खुश है, फिर तो वो चर्च में नहीं किया, शुक्र है मस्जिद में कर लिया। लेकिन हमेशा अपने बच्चों की ये तरबियत करें माएँ कि अगर उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करनी भी है तो अपना दीन उनका इतना पुख्ता हो कि उनको दीन पर लेकर आए। देखिए ना, एक मुसलमान लड़का है, नमाज ही नहीं पढ़ता, उसको ये ऐसी चीज़ों में कुछ फ़र्क ही नहीं दिखता। यानी ये जो कुछ मैं देख रही हूँ इर्द गिर्द, इतनी तेज़ी से मुसलमानों में फैल रहा है। और एक वक्त आ गया कि मेरे बच्चे कहने लग गए कि पहले ईदें बोर है, क्रिसमस मज़े का, क्योंकि चारों तरफ क्रिसमस, यूल यूल, आपके तो यूल कहते हैं ना उसको, तो ईद पे क्या होता है, छुट्टियां भी नहीं, बाज लोग लेते, जाओ भाई स्कूल जाओ, ईद है, वीकेंड पे जाके चले जाएंगे दावत में, है ना? तो ये हम माँ बाप का जिम्मा है जी। बस वही बात है ना, वो कहते हैं ना कि कौम के दिल से एहसास से सिया जाता रहा, बदबू खत्म हो जाती है ना जब गुनाह की, तो फिर ये कुछ होता है। जब हम अपने बच्चों को तौहीद और शिर्क का फर्क सिखा देंगे ना, सिर्फ एक काम कर दें अपने बच्चों को, अल्लाह और उसके तकाजे सिखा दें, कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए कि उनको पता ही नहीं अल्लाह है क्या, तो वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, फलां उससे भी ऐसा है, वो तो वैसा है। आप नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं, मुसलमानों में लोग ऐसे हैं कि जो नमाज रोजे का नाम ही नहीं लेते, वो कहते हैं मुस्लिम ही नहीं। आज के दौर का तो ये फैशन है। तो अल्लाह हिदायत है हम सबका। देखो जी,
जी, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना अच्छा माशाल्लाह पुरसकून माहौल रहा। तो जो यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात है वो यही होती है कि जब भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होता है वो माशाल्लाह लोग जितने भी आते हैं आते वही हैं जिनको अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है, जो कोशिश करते हैं अल्लाह उनका आना कबूल करे, आपका भी आना कबूल करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है। और आज वो यही, जब मैं शुरू में आप सबको वेलकम कर रही थी तो यही सोच रही थी कि आज के बाद नहीं फिर इधर आना। बड़ी आदत है, तो वो जिसको कहते हैं ना कि अपने घर की एक बात होती, चाबी मेरे पास है, कोड मेरे पास है, मैं दिन को किसी वक्त भी आ सकती हूँ, शाम को हम लोग आते हैं नहीं आते हैं, तो एक अपनी मलकियत का एहसास था। तो आज ये थोड़ी देर बाद ये बेगानी हो जा रही है चीज़। लेकिन वही बात है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे और इसे अच्छी जगह हमें दे, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मिलेगी भी। लेकिन उसमें वही उस्ताद जी वाली बात ना, बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे जितनी जगह थी उतने लोग नहीं पहुँचे, जितने पहुँचे हैं। तो अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह जी हम आएंगे, चाहे हम 10 आते थे चाहे 12 आते थे, तो हमें छोटा कमरा ना देना, इसी तरह की कोई बड़ी जगह देना। तो इसमें आप सबका भी साथ ज़रूरी है कि आप लोग भी इसके लिए कोशिश करें। और यहाँ पे स्ट्रोमन में इंशाल्लाह जो ही अब अगली जगह दो तीन जगह हैं हमारी नज़र में, कोशिश हमारी इसी इलाके में है कि यहाँ पे सबके लिए आसानी है। तो अब देखते हैं जिस जगह का मुकद्दर जागता है वहाँ पे अब हम इंशाल्लाह
देखिए ना,
शुरू
इधर
करेंगे।
आम दिनों में क्या
लेकिन
होता
नित्तौर
होगा।
से पहले, नित्तौर के बाद जो है ना इंशाल्लाह जो है ना पहले हफ्ते में ही जनवरी के इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी और आप
वो
सबको
किधर हो रही है
मैसेज
वो इनको
मिलेगा।
बता देना।
जी फिलहाल तो अभी हमारे पास वो जगह डिसाइड नहीं हो सकी, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे आपको पता है जब कभी उनकी जगह लेनी होती है तो अप्लाई वगैरह करना होता है, उनकी वेंटे लिस्ट होती है, तो
नहीं,
इस वजह
लेकिन
से
आप लोग
करके।
अपने में से किसी के घर का दे देना, उसमें लोग आए, क्योंकि उस दिन फिर आप लोगों को कैसे बुलाएंगे?
जी इस वक्त हमारे दो
मस्जिद
साथी
का
जो है
दे
ना,
दें, मस्जिद कोई भी दे दें।
जी इस वक्त हमारे दो साथी जो है ना वो इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं कि जो है ना उनके घर हम आ जाएं। तो अब देखते हैं जिसके घर में, लेकिन पहला नंबर तो बाजी कमर जी का है। हाँ जी
पता है सबको इनके घर का?
जी ये अब खुद बता देते हैं।